आज ईश्वर इसने निमंत्रण पर आप सभी परमात्मा के घर पहुंचे हैं। विशेष ईश्वर स्वयंवर प्रभु समर्पण समारोह के निमित्त आज के स्वागत सत्र में हम सभी हमारे बीच परमादरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। संगम की ये सुहावने समय पर जहां आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन हो रहा है और सच्ची पार्वती अपने सच्चे शिव को स्वयंवर या तो वरने जा रही है, ऐसे सुंदर मौके पर हम सभी यहाँ पहुंचे हैं। तो आज दीदी हम सभी को ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगी और विशेष जिस प्रसंग के अनुरूप हम यहाँ पहुंचे हैं, उस प्रसंग को हम सभी के बीच में उजागर करेंगे। आदरणीय दीदी जी, आप साकार मात पिता की पालना से पले हैं और विशेष दिल्ली शक्तिनगर सब जोनल इंचार्ज, दिल्ली के आप मुख्य निमित्त दीदी हैं, साथ साथ रशिया का भी सेवाएं आप संभाल रहे हैं। आप हमारी महिला विंग के चेयरपर्सन हैं और समय प्रति समय भटिया और अनेक ऐसे सेवाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी हमें सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। कोई किसी को कहे नमस्ते तो आगे से कहते हैं ना नमस्ते, कोई कहे राम राम तो उसको कहते हैं राम राम। हमने कहा ओम शांति, आप चुप रहे, तो मैंने दोबारा कहा कि अभी जवाब दे देंगे, तो आपने जवाब दे दिया ओम शांति। वास्तव में इस श्री विश्वविद्यालय में जब हम ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये शब्द कोई नमस्ते या राम राम मौखिक नहीं है। ये शब्द सभी को स्मृति दिलाता है कि हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चे साधारण तो नहीं हो सकते। जरूर है कि उसमें ज्यादा ना सही थोड़े गुण तो ईश्वर के जरूर होंगे। गायन है पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर कोई पिता का पुत्र है, किसी नस्ल का घोड़ा है, तो उसमें उस नस्ल के या पिता के गुण ज्यादा ना सही थोड़े जरूर होंगे। तो हम सब में भी जो शांति का दाता सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, उनके सारे गुण अगर ना भी हों, थोड़े गुण तो अवश्य होंगे। और ये गुण शांति का, ये सबके अंदर है। अभी देखो सब शांत होके बैठे हैं क्योंकि ये आपके अंदर गुण है, आप उसके गुण के स्वरूप होकर बैठे हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि इस अवसर पर जो भी आप सब आए हैं, ये बड़े खुशियों का मौका है। ये न केवल खुशियां मनाने का मौका है बल्कि वातावरण में खुशियां फैलाने का मौका है। सुंदर अवसर है। बहुत सी मेरी प्यारी बहनों ने जब जीवन में ये डिसाइड किया कि हमें अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर देना है, तो उनके इस समर्पण के श्रेष्ठ भाव को उनके माता पिता या उनके नजदीक के संबंधों ने भी समझा और बहनों ने भी समझा। उसका समारोह मनाने के लिए हम आप सभी यहां कलेक्ट हुए हैं। अभी तो काफी लंबे टाइम से बहनें सेवा केंद्र में रहना शुरू कर देती हैं और कुछ समय तक रहती हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई इससे भी ज्यादा लंबा टाइम। फिर कहते हैं अब हमारा समर्पण समारोह होगा। लेकिन मैं अपने समय की बात बताऊं तो हमारे समय इतने लंबे समय की बात नहीं होती थी। हमारे लौकिक पिता ज्ञान में अवश्य संपर्क में थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ा लिखा के बच्ची को एक आश्रम में छोड़ दूं। समझते थे जीवन यहाँ का क्या है, लेकिन कई बार माता पिता ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार और स्वभाव शायद इस त्याग और तप के जीवन में वो चल पाए या ना चल पाए, ये माँ बाप का हित होता है और बच्चों के लिए उनकी भावनाएं होती हैं। अगर ना चल पाए तो क्या होगा, ऐसा सोचकर हमेशा मनुष्य पहले नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव कम सोचता है। लड़की की शादी करेंगे सोचेंगे बस अपने घर बस जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, बस यही सभी मुबारक देना कि अपने घर में सुखी रहे। लड़के की शादी करेंगे तब भी यही कहेंगे, कन्या अच्छी आए, घर को बसाए, सबको प्यार स्नेह सम्मान दे, यही सभी आशीर्वाद देखे जाइए। अंदर से संशय रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पहले लड़की की चिंता होती थी माँ बाप को, आज लड़के की शादी में भी चिंता होती है, पता नहीं बहू कैसी घर में आएगी, घर को बना के रखेगी या तोड़ के रखेगी। लेकिन ईश्वर के घर में जब आते हैं तो जो भी बहनों का समर्पण समारोह में मैं भी आई हूं और आप सब भी आए हैं, ये बहनें कोई एक दो दिन में इन्होंने निर्णय नहीं लिया, लेकिन काफी लंबा समय रह करके इस वातावरण को देखा, अपने जीवन को देखा, अन्य समर्पित बहनों के जीवन को देखा, तभी इन्होंने अपने जीवन में ये तय किया कि हम अपने जीवन को प्रभु के अर्पित करेंगे। मैं अपनी बात सुना रही थी, जब हमारे पिता हमको इतनी अनुमति नहीं देते थे तो इस यज्ञ की मातेश्री जो यज्ञ माता थी, वो एक बार दिल्ली में आए हुए थे तो मैं मतेश्वरी जी के पास गई और मैंने जाके कहा कि मामा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, मैं कोई टीचर्स ट्रेनिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई ट्रेनिंग करूँगी तो नौकरी करनी पड़ेगी और मैं इस प्रकार की बातों में नहीं जाना चाहती, जबकि ईश्वरीय सेवा मेरी रुचि है और ये श्रेष्ठ लक्ष्य है मेरे जीवन का। लेकिन पिता अनुमति नहीं देते, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारी मामा ने हमको बड़े प्यार से कहा कि मैं आपके पिता से बात करूंगी। मामा दिल्ली में ही आए हुए थे, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, तो अचानक दो दिन के पश्चात पिताजी का मतेश्वरी जी से मिलना हुआ और मिलने पर मामा ने पिताजी से पूछ लिया, क्योंकि उनकी कास्ट नंदा थी, तो कहा नंदा जी आपने हमारी चक्रधारी के विषय में क्या सोचा है। तो पिताजी ने कहा मामा क्या सोचना है, यज्ञ में सब काम करना पड़ता है, हर एक के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, समा के मिल के चलना पड़ता है, जीवन में तप है, ये तप का जीवन है, ये त्याग का जीवन है। इन्होंने घर में कभी अपने हाथों से काम नहीं किया और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करने का अवसर मिला ही नहीं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा स्टेप बच्ची उठा ले या मैं उनको परमिशन दे दूं, कैसे वहां चल पाएगी, क्या होगा, ये मैं नहीं समझता हूं। तो मामा ने बहुत सुंदर उनको उत्तर दिया, कहा 4 सप्ताह की आप इनको छुट्टी दीजिए, 4 सप्ताह ये सेवा केंद्र पर रहें, ये स्वयं को भी देखें कि मैं इस वातावरण में, इस त्याग तप के जीवन में सबके साथ एडजस्ट होके रह सकती हूं कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले इन्हें स्वयं को चेक करना होगा। उसके पश्चात आप भी देखिए कि आपका बच्चा इतने समय में वहां राजी, खुश या किस स्थिति में चल रहा है, और हम भी देखेंगे कि ये इस परिवार में कितना त्याग तप के जीवन को आकर्षित करती हैं और प्यार से सबसे मिलजुल कर रह सकती हैं। तो ये भी देखें, आप भी देखिए और हम भी देखेंगे। मैं समझती हूं वो 4 सप्ताह का दिन था, आज मुझे 60 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है इस विद्यालय में रहते हुए। वो 4 सप्ताह ही चलते चले आ रहे हैं और मुझे कई बार ऐसा सुनाने में आता है 60 वर्ष, लेकिन लगता तो 7 दिन ही हैं। ये पता नहीं दिन कैसे पास हो गए। आज भी हमें कोई कहता है आप कितने साल की हो गई, मैंने कहा आप साल क्यों पूछते हो, अभी तो थोड़े समय की ही तो मैं हूं, मैं ज्यादा बड़ी आयु में नहीं अभी गई हूं। मुझे अपने आप को लगता ही नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूं, लेकिन ये जीवन रोज ऐसे लगता है, एक नवीनता भरा जीवन है, एक खुशियों भरा जीवन है। लेकिन बहुत सुंदर जब मैं आई तो गीत चल रहा था, इस जीवन को जो मैंने तुझे दिया है इसे मुझे समर्पित कर दो, और जो मैं आज्ञा देता हूं उस आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को चलाओ। ये ईश्वर की आज्ञा का दिव्य संदेश गीत में जब मैं सुन रही थी तो मुझे यही आया कि वास्तव में देखा जाए आज तक हमें जीवन हमारे माता पिता ने जो दिया, जो उन्होंने सिखाया, जो संस्कृति दी, जो उठना बैठना, संबंधों से मिलना जुलना सिखाया, हम उसी अनुसार चलते चले आए। लेकिन जब हम ईश्वर के बनते हैं तो ईश्वर पिता हम बच्चों को यही कहता है कि अब तुम्हें ऐसे चलना है जैसे मैं तुम्हें कहूं, क्योंकि अब ये जीवन आपका नहीं, ये जीवन मेरा दिया हुआ है। गीत के साथ मैंने विचार किया, बाबा तो कहते हैं हर मनुष्य जन्म अपने कर्मों अनुसार लेता है और कर्मों अनुसार फल पाता है, फिर बाबा का ये गीत क्यों बना कि अर्पित कर दे ये जीवन जो मैंने तुझे दिया है। ये तो मेरे कर्मों का जीवन है, बाबा ने थोड़ी दिया है। फिर मैं बाबा से मन ही मन पूछती हूँ, बाबा ये गीत तो राइट है, मैं कुछ अर्थ और समझ रही हूं। तो बाबा से मुझे उत्तर मिलता है, जब बच्चे ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु अर्पित करते हैं, उस क्षण से ये जीवन उनका नहीं, ये जीवन मेरा होता है। जैसे मैं इस जीवन को जीने के लिए शिक्षा दूं, समझ दूं, उसके अनुसार ही उन्हें अपने जीवन को आगे चलाना है। ये जीवन आपका लौकिक जीवन नहीं, सबसे स्नेह करो, सबको सत्कार दो, लेकिन ख्याल रखो इस ईश्वरीय जीवन में ईश्वर की मुझे क्या आज्ञा है, मुझे किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और सचमुच अगर ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, बड़ा सरलता से, सहज और आसानी और खुशी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं मन मत, पर मत, दुनिया के किसी मत पर हम ना चलें, लेकिन ईश्वर मुझे क्या कहता है, मुझे केवल उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना है। अब इस विद्यालय में जब शिक्षा मिलती है तो कई नए लोग आते हैं, उस समय आने के पश्चात कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जो आप मुरली सुनने के लिए कहते हो, वो मुरली में वही वही बातें तो होती हैं, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, विकारों से बचो, निर्विकारी बनो, यही तो बातें रोज कहते हैं, तो रोज सुनने की क्या आवश्यकता है। और अगर समर्पित बहन के मन में भी ये आ जाए कि वही तो महावाक्य हैं और वो रोज ना सुने, कभी मार्ग में सही चले मंजिल पर पहुंचे नहीं हो सकता। अगर सही मार्ग पर चलना है और मंजिल पर पहुंचना है तो जो दाता जब हमको सुनाए उसी क्षण हम ऐसे सुने, ये मुझे आज ही सुनने को मिला है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक माँ अपने बच्ची को कहती है, बेटे ये शीशे का गिलास पड़ा है, इसको उठा करके आगे रख दो, उस जगह रखो कहीं पाओ किसी का लगे तो टूट ना जाए। बच्ची सुन के फिर अलबेली हो जाती है। माँ पुनः कहती है, बेटी देखना ये गिलास टूट ना जाए, उठाकर इसको रख दो। बात वही कही, तब भी उठाया नहीं, थर्ड टाइम फिर कहती है और चौथी बार कभी गर्ज के भी कहती है कि तो सुनती नहीं है, ये गिलास कहा है उठाओ, उठा के रखो। अब कोई कहे या बच्चा भी कह देते है, मम्मी बार बार क्यों कहते हो, लेकिन बार बार क्यों कहा, क्योंकि एक बार कहने से नहीं रखा, दो बार कहने से नहीं रखा, तीन बार कहने से नहीं रखा, आखिर माँ को जोर से कहना पड़ा ताकि जो बात वो करने के लिए कह रही है वो बच्चा उसको करे। और अगर बच्चा ये कहे कि रिपीट क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों कह रहे हो, तो ये बार बार कहने की आवश्यकता है या नहीं है। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि मैं जब ज्ञान सुनाता हूं, कई ज्ञान की ऐसी बातें हैं जिन्हें ग्रहण करने के लिए कुछ लंबा समय अभ्यास की आवश्यकता होती है, और उस बात को एक दो बार सुन करके प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पाते, वो बात मुझे कई बार 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 कहनी पड़ती। लेकिन मैं कभी आवेश में, जोश में या गुस्से में आकर नहीं कहता हूं, मैं हमेशा प्यार और स्नेह से ही कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो करेगा सो पाएगा। कहना मेरा फर्ज है, करना बच्चों का फर्ज है। हर एक ने इतनी स्टेटस, इतना ही पद नहीं पाना कि सभी बातें फौरन अपने जीवन में ले आए, जितना करेंगे उतना ही तो पाएंगे। जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कईयों के संबंधी भी ज्ञान में चलने वाले हैं या संपर्क में होंगे, तो मैं एक बात एक सुनाती हूं, मेरी शायद पुराने भाई बहनों ने सुना भी कई बार होगा। बाबा मामा माउंट आबू में रहते थे, जो इस विद्यालय के साकार प्रमुख रहे, जिन्होंने हम सब बच्चों को ज्ञान की पालना देकर के इस कदर योग्य बनाया कि हम देश और विदेश में ईश्वर का संदेश पहुंचा सके। तो बाबा माउंट आबू से जब सर्दी का सीजन होता था तो कभी दिल्ली में आते थे और कभी बॉम्बे में जाते थे। एक बार बाबा को दिल्ली में आने का प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट टाइम तो बाबा कमला नगर जो प्रथम सेवा केंद्र दिल्ली का था आफ्टर माउंट आबू, वो सेवा केंद्र था, बड़ा नहीं था, सेकंड फ्लोर में था, नीचे प्रेस थी, ऊपर मालिक रहता था, उसके ऊपर हम रहते थे और उससे ऊपर जगदीश प्राता जी साहित्य आदि लिखने का कार्य करते थे। तो बाबा उस भवन में आए थे जब इतना ऊंचा और छोटा सा था, और जब सेकंड टाइम बाबा को बुलाना था तो ऐसा मन में आया कि अभी कमला नगर बाबा को नहीं बुलाएंगे क्योंकि छोटा सा स्थान है और कुछ सेवा केंद्र अन्य भी खुल गए हैं, सुनेंगे कि बाबा आया हुआ है तो बाबा से मिलने के लिए कई आ सकते हैं। अब कहां बाबा को बुलाएं? उस समय इतने सेवा केंद्र भी नहीं थे और इतना संपर्क और संबंध भी नहीं था। अभी नए नए माउंट आबू में आए थे सिंध कराची से, लेकिन एक माता हमारे पास आती थी, वो सरदारनी थी और स्वयं आती थी, उसका पति ज्ञान में नहीं आता था। उसका बंगला थोड़ा बड़ा था और सेंटर के नजदीक ही था। सोचा अगर इस माता का बंगला बाबा के लिए मिल जाए तो बाबा को हम वहां बुलाएंगे। और उस माता ने अपने पति से पूछा, पति पत्नी का स्नेह था, आपस में रिगार्ड था, पति ने मना नहीं किया और स्वीकार किया और बाबा उनके घर में आकर ठहरे थे। स्वाभाविक है जब किसी के यहाँ ऐसा मेहमान आता है जहाँ सब सुनने के लिए आए हैं तो उनका पति भी सभा में आके बैठता था और सुनता था, और काफी होमली हो चुका था, बाबा के साथ क्लोज बातचीत करता था। एक दिन वो बाबा के पास बैठा, उसने बाबा से कहा कि बाबा मैं एक पर्सनल आपको अपनी बात सुनाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे मना ना कीजिए, मैं बात जरूर सुनाऊंगा। साथ डायरेक्शन भी दे देता है कि मेरी बात भी सुनिए और अगर कुछ बात उसका प्रतिउत्तर देना हो तो मुझे मना ना करना। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे सुनाओ। तो उन्होंने क्या सुनाया कि बाबा मैं जब 11 साल का था तब से अभी मेरी आयु काफी बड़ी हो गई है, मैं 4 चम्मच रात को सोने से पहले लेता हूं। वो क्या होता है, वाइन या हल्की शराब क्या होती मुझे नहीं मालूम, मानो 4 चम्मच लेता हूं। तो बाबा ने उसका मुंह देखा, कहा बाबा मैंने कहा था ना मना नहीं करना मुझे, क्यों बचपन से लेता आया हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे मना तो नहीं करता, लेकिन बाप ज्ञान और योग की शिक्षा देकर विश्व के बादशाही देने के लिए आया हुआ है, तुम इन 4 चम्मच के बदले विश्व के बादशाही गवा दोगे। उसने कहा बाबा मैंने कहा था ना मुझे मना नहीं करना। बाबा ने कहा वो मना नहीं कर रहा, मानो वो लेता रहा। लेकिन ईश्वरीय यज्ञ में उस समय आवश्यकता का समय था, उसने बहुत सहयोग दिया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, बीच में बहुत सहयोग दिया। और समय आने पर, काफी समय के बाद जब वो काफी बुजुर्ग भी था, उसने श्री छोड़ दिया, तो उसकी पत्नी माउंट आबू में उस आत्मा के निमित्त भोग लगाने के लिए आया करती थी। 1 साल पहले आई थी, तब मैं ज्ञान में नहीं थी, और पीछे जब मैं ज्ञान में आई तो मैं गुलजादा आदि जी के साथ ही रहती थी, जो इस विद्यालय की बहुत प्रमुख रही जिनके द्वारा हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते रहे। तो दादी ने मुझे कहा कि ये माता बाबा को भोग लगाती है अपने सरदार पति के लिए, आप इनको मोहन चाबू लेकर जाओ। तो मैं मोहन चाबू उनको लेकर आई। आप में से शायद कुछ को मालूम हो या ना हो, पहले जब हमारे यहाँ भोग लगता था, अभी भी यहाँ माउंट आबू तो ऐसे ही होता है कि कुछ भाई बहने जिनको साक्षात्कार का वरदान प्राप्त है, वो साक्षात्कार के आधार से जब हम भोग रखते हैं तैयार करके, तो वो साक्षात्कार में यहाँ से जैसे आत्मा गुम हो जाती है और सूक्ष्म वतन में वो अपने सन्मुख परमात्मा को ब्रह्मा के बाबा के रूप में, एक लाइट के आकार में ब्रह्मा बाबा है और एक ज्योति पॉइंट जो परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है, वो उनमें प्रवेश होते हैं और प्रवेश होके वो भोग स्वीकार करते। उस समय 12 बजे का टाइम था जब भोग लगना था। एक तरफ मामा और बाबा बैठे थे, एक तरफ ट्रांस में जाने वाली संदेशी बहन बैठी थी, एक तरफ कोई 5-7 भाई थे, एक तरफ कोई 8-10 बहनें बैठी थी। छोटा सा हमारा हॉल था, जो ईशु बहन का ऑफिस था वही हॉल कहलाता था। और जब वहां भोग लगने लगा तो संदेशी ध्यान में गई और ध्यान में जाके कुछ क्षणों के पश्चात ही वापिस आ गई। जब वापिस आई तो ऐसे लगा कि इतनी जल्दी इसने भोग भी लगा दिया आज। लेकिन उसने आने पर बाबा मामा की तरफ देखते हुए कहा कि बाबा, मैं वतन में भोग लेकर गई, आलमय थी जो सूक्ष्म लाइट के आकारी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट थे, उस ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप के मुख द्वारा उन्होंने मुझे कहा, मेरा ये बच्चा जिसके लिए तुम भोग लाई हो, ये हमेशा देसी घी खाता है, कभी इसने तेल या अन्य प्रकार की चीज नहीं खाई, तो तुम तेल में, क्योंकि रिफाइन में बन के भोग गया था, इसलिए पहले इसे देसी घी में बना करके लाओ, फिर बाबा अपने बच्चे को भोग स्वीकार कराएगा। तो संदेशी ने जब बाबा को मामा को ये संदेश दिया, तो बाबा ने भंडारे की प्रमुख बहन जिसका नाम भोली दादी था उसको बुलाया और कहा, भोली जल्दी से जल्दी चाहे छोटी छोटी 4 पूरी बना लो, थोड़ा हलवा बनाओ, थोड़ा आलू बनाओ और जल्दी से जल्दी ले आओ, संदेशी भोग लगाएगी, क्योंकि बाबा बच्चे को देसी घी का ही भोग खिलाना चाहता है। तो मैं समझती हूँ वो 15-20 मिनट में 1-2 जगह बना के और जल्दी से जल्दी वो ले आई। यह है ईश्वर का प्यार उस आत्मा के प्रति, जिसने बहुत स्नेह और प्यार से बाबा को अपने घर रखा था। अब जब उसको भोग लगा लिया, उस समय यह सिस्टम चलता था कि जो आत्मा शरीर छोड़ गई है, कई बार वो आत्माएं जो संदेशी होती थी, भोग स्वीकार कराने जाती थी, उसके तन में वो आत्माएं प्रवेश करती थी और प्रवेश होकर अपने परिवार से मिलती थी और कुछ कहना होता था कहती भी थी, लेकिन अधिकतर वातावरण रोने आदि का हो जाता था, जैसे मिलना और उनको वो समय याद आ जाता था। तो बाबा ने कुछ समय के बाद ये सब सिस्टम बंद करा दिया, ये नहीं चलेगा। तो ये जो आम सेंटरों पर संदेशी के तन में आत्मा आएगी भोग स्वीकार, तो ये बंद हो गया था। देखिए माउंट आबू में ये चल रहा था, तब चलता ही था। तो जब वो आत्मा संदेशी के तन में आई और तन में प्रवेश होकर उसने केवल ऐसे बाबा को देखा, देखते ही इस कदर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जैसे कहते हैं ना अश्रु की एक झड़ी लग गई हो, बहुत आंसू गिरते चले जा रहे थे। अब मैं भी क्वाइट न्यू थी, नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम क्यों मैं ये पता चला कि सरदार जी की आत्मा इनमें आई है, लेकिन सरदार जी रो क्यों रहे हैं मुझे नहीं कारण कुछ मालूम था, लेकिन बहुत रो रहे थे। तो बाबा ने उस बच्चे को अपना रुमाल निकाला, उनके आंसू पोछे और अपने गले लगाया, और उसको गले लगा के बाबा ने कहा, बच्चे अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बाबा हमेशा कहते हैं एक प्राप्ति वालों की लाइन होगी, ये बात की बातें हैं, और एक पश्चाताप करने वालों की लाइन होगी, अंत समय में दो प्रकार की लाइनें होंगी। जिन्होंने मेरी आज्ञा अनुकूल कदम बढ़ाया उन्हें जो प्रभु प्राप्तियां होनी हैं, वो प्राप्तियों की लाइन में खड़े हैं, और कई सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने वो कुछ नहीं किया, वो पश्चाताप की लाइन में खड़े। तो वो बच्चे को देखा, एक तरफ उनका रिगार्ड रखा कि उसको देसी घी ही खिलाऊंगा, दूसरा नहीं खिलाना, स्नेह भी पूरा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो रो रहा है तो बाबा जानता है, क्योंकि उनकी पत्नी ने मुझे पीछे बताया कि सरदार जी को चार चम्मच लेने की आदत थी, बाबा को सुना देने के बाद भी उन्होंने इस आदत को छोड़ा नहीं, इसलिए ये पश्चाताप के उनको आंसू थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अब रोने से क्या होगा, अब नहीं रो, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, और अपने रुमाल निकाल कर उसके आंसू पोंछ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। शिव बाबा कहता है, अगर कोई भूल हो जाती है और समय बीत जाता है तब बाप बाप नहीं होता, तब बाप भी धर्मराज होता। देखिए धर्मराज कोई आंख दिखा के डंडा मार के नहीं होता है, उस आत्मा को रिपेंटेंस पश्चाताप इस कदर होता है जैसे को उसको बहुत मार रहा, बहुत बुरी तरह पिट रहा है, वो अपने आप से उसको ऐसी फीलिंग आती। तो हमने ये दृश्य देखा, तो मैं यही बता रही थी कि परमात्मा पिता हम बच्चों को ज्ञान देता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं ये बातें तो मैंने सुनी हुई हैं, ये तो पहले भी बाबा ने कही थी, ये आज भी कही है, चलो किसी दिन वाणी ना सुनी तो क्या हुआ, वही वाणी तो है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि पिता ज्ञान सुनाने के लिए धरा पर नहीं आए, वो अपने बच्चों को ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए आए। उनकी यही आज्ञा है, जो मैं ज्ञान देता हूं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो और उसके अनुकूल अपना जीवन निर्माण करते चले जाओ। ठीक है किसी बात को एक दो बार सुनने से प्रैक्टिकल करना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाबा ने ये दो तीन दिन हुए मुरली में सुनाया कि कई बार कई कार्य मेरे बच्चे नहीं कर पाते, मेरे को कभी आता है कि मैं ही कर दूं इनकी तरफ से, मैं पिता हूं ना, फिर दूसरी तरफ ये भी याद आता है जो ईश्वरीय संदेश है कि जो करेगा सो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, बल दूंगा, लेकिन करना आपको ही होगा। तो इस प्रकार परमात्मा पिता इस विद्यालय में अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, राह दिखाते हैं, और रहा चलने के बल भी देते, दुनियावी रूप में कह देते हैं वे हरिद्वार का रास्ता तो सब बता सकते लेकिन वहां की टिकट के पैसे नहीं देंगे, टिकट तो आपको ही लेनी पड़ेगी। और यहां परमात्मा पिता कहते हैं मैं तुम्हें सत्य राह भी दिखाऊंगा, राह में चलकर मंजिल पर पहुंचने की शक्ति भी मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि देह जब तक आपने समझा तो देह के संबंधों को अपना संबंधी समझा, ये चाचा है, ये मामा है, ये पति है, ये पत्नी, ये पुत्र है, ये पुत्री है। जब ईश्वर ने संदेश दिया ये तो शरीर लेकर के भिन्न भिन्न आत्मा रोल अदा करती है, एक आत्मा कितने रोल अदा करती है, लेकिन याद ना भूल जाओ कि आप आत्मा हो। ये शरीर आज लिया है, अगर कल छोड़ भी देंगे तो आत्मा के शरीर छोड़ने पर ये शब्द बोला जाता है, क्या आपने सुना है वो चल बसे हैं, चल और बसे, क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो चली है, शरीर तो कहीं चला नहीं, वो तो सामने का सामने ही पड़ा है और जाने वाला बसता है, किसी और तन को धारण करता है। इसलिए कहते चल बसा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा ही परमात्मा का पुत्र है, उसकी संतान है। और परमात्मा पिता जो सुख शांति आनंद प्रेम का दाता है, वो कहते हैं मेरे पास जितने गुण और शक्तियां हैं ये सब गुण और शक्तियां मेरे बच्चों का खजाना है। अगर मेरे बच्चे मेरा खजाना लेना चाहते हैं तो मेरे से अपना मन और बुद्धि का संबंध जोड़ें। मुश्किल काम नहीं बताता, कोई माथा रगड़ो, कोई रश में जाओ, कहीं नारियल चढ़ाओ, कहीं कोई मंत्र पढ़ो, कहीं जाप करो, कहते बहुत कुछ किया लेकिन मुझे बिना पहचाने किया। अब मैं तुम बच्चों को पहचान देने आया हूं कि जैसे ये नाशवान शरीर है, चाहे वो श्री राम जी हैं या श्री कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं या श्री नारायण जी हैं, पांचों तत्व किसी के सतो प्रधान हैं तो बड़े सुंदर सुडोल निरोगी हैं, किसी के रजो प्रधान हैं, किसी के तमो प्रधान हैं, ये शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी, वो कभी मरती नहीं है, वो केवल चोला लेती है और चोला तजती। तो परमात्मा कहते हैं मैं यही कहता हूं कि मेरे से नाता जोड़ो। अब प्रश्न उठता है कैसे नाता जोड़े, तो दाता कहता है कि जब आप बैठते हो तो अपने को देह ना समझ करके अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो हाड़ मांस का पिंजर है, मालूम है आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा, कल नहीं छूटेगा, परसों कभी तो छूटना है, क्योंकि ये टेम्पररी, ये स्थाई नहीं। अब हम एक कहानी से सुनाती हूं मैं, क्योंकि मुझे पता चला अभी मुन्नी बहन भी आएंगे, तो कहानी ऐसी छोटी सी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी दुनिया में भगवान ही मानते हैं और हम कहते हैं देव आत्मा नंबर वन वो प्रिंस था विश्व का, परमात्मा तो दिव्य ज्योति स्वरूप है, कल्याणकारी है और शिव परमात्मा है। वो कहानी सी आती है, कहते श्री कृष्ण और सुदामा, एक बिल्कुल गरीब था, एक शाहूकार था, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक बार सुदामा की मां ने सुदामा को थोड़े चावल चने दिए कि जब छुट्टी होगी रिसेस होती है तो दोनों मिलकर के खा लेना। तो छोटे थे और गांव में बच्चे पेड़ पर टहनी पर चढ़ के बैठ जाते हैं, दोनों पेड़ की टहनी पर बैठ गए और सुदामा को लालच आ गया कि इतने से तो चने हैं, क्यों ना मैं अकेला ही खा जाऊं। और पहले वो परना सा एक कपड़ा सा गले में डाल के रखते थे, तो बच्चों ने कपड़ा गले में डाला हुआ था तो सुदामा ने अपने उस कपड़े को ऐसे मुंह पर रखा और वो चने खा रहा था। तो चने खाएगा तो कड़कड़ की थोड़ी आवाज तो आएगी। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, ये सुदामा ये कड़कड़ की आवाज क्या आ रही है? तो सुदामा ने कहा, महाराज बहुत ठंडी है, दांत कटकटा रहे हैं। हालांकि वो दांत नहीं कटकटा रहे थे, वो चने खाए जा रहे थे। इस गाथा में सुनाते हैं कि एक छोटा सा सुदामा ने झूठ बोला भगवान से, और झूठ का परिणाम क्या निकला कि वो रंक बन गया गरीब और वो राव बन गया राजा। इस झूठ का ये परिणाम हुआ। तो परमात्मा पिता इस समय हम बच्चों को बताते हैं, तुम बच्चों ने भी झूठ बोला है, झूठ के परिणाम स्वरूप मैं परमात्मा आपका पिता दुख हरता सुख करता, जीवन में सच्ची शांति और पवित्रता प्रदान करने वाला, जीवन को अमर फल प्राप्त कराने वाला, और मेरे बच्चे दुखी अशांत परेशान, कारण क्या है? हम एक ही घर में तो रहते थे, परमात्मा पिता सुना रहे हैं, ये सृष्टि तो मुसाफिर खाना है, बोलते हैं दुनिया रहन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये संसार हमारा घर नहीं है, ये तो बसेरा है, जब तक आए हुए हैं तब तक यहाँ रहते हैं, फिर हम चले जाएंगे क्योंकि हमारा घर नहीं है। तो हमारा वही घर है जो हमारे पिता का घर था। अब परमात्मा पिता भी इन पांच तत्वों के लोक से परे, जिसको छठा ज्योति मह तत्व कहते हैं, उस परम धाम के वासी, और हम भी परम धाम के निवासी हैं, लेकिन परम धाम से हम इस धरा पर आए, शरीर रूपी वस्त्र धारण किया और पिता पुत्र माता पिता जो भी रोल थे वो हमने अदा करने शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। किसने पूछा आप कौन हो? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये परिचय हमने देना शुरू कर दिया। अब परमात्मा तो परमात्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी। वो जब देखता है कि मेरे बच्चे मेरे से मिलना चाहते हैं, कहते हैं किस भी तो तुझको दिखाऊं प्रभु, कैसे तेरा ध्यान करूं जो मैं तेरे से मिल सकूं। तो दाता कहता है, जब मैं देखता हूं मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए व्याकुल हैं और शांति आनंद पवित्रता सुख और जीवन में संकट हरने के लिए मेरे को प्रार्थना और आराधना करते हैं, ऐसे टाइम पर जब भटक भटक की आत्मा थक चुकी होती है, मैं स्वयं इस धरा पर अवतरित होता हूं। अवतरित होकर के मैं पहचान देता हूं कि हे बच्चे, तू और मैं दोनों एक ही घर के रहने वाले हैं, तू भी इस सृष्टि का रहने वाला नहीं, मैं भी आया हूं तुझे अपनी पहचान और तुझे तेरी पहचान देने के लिए। ना ये घर सृष्टि तेरी है, ना ये घर मेरा है। तू मेरे से मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं सकता, तो मैं तुझे पहचान देने के लिए आया हूं, क्योंकि तुमने बड़ा झूठ बोला। जबकि देह तेरी है, तू देह नहीं है। हर समय बोलेगा, आज मेरी टांग में बड़ी दर्द हो रही, आज मेरे आंख में कुछ पड़ गया, ये सब कुछ तेरा है, तू नहीं है। तू तो चैतन्य शक्ति अविनाशी सत्ता आत्मा है, तू तो अजर अमर है, मेरा पुत्र है। लेकिन तुमने स्वयं को देह समझकर, देह के संबंधों को अपना संबंधी मानकर उनसे इस कदर अटैच्ड हो गया कि सुख चाहता है, प्रार्थना मेरी करता है और मांगता यह सब कुछ प्राणी मात्र से है। मैं तुझे आकर अपनी पहचान देता हूं कि ना तू देह है ना मैं देह। मैंने भी तुझे सत्य पहचान देने के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि की संगम वेला पर इस सृष्टि पर अवतरित होकर मैं तुझे अपनी पहचान देता हूं और तुझे तेरी पहचान देता हूं। तो फर्स्ट लेसन जो ईश्वर ने हम सब बच्चों को दिया वो यही दिया कि तू चैतन्य शक्ति आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, इन स्थूल नेत्रों से देखने योग्य नहीं है, स्थूल बुद्धि से जानने योग्य नहीं है। स्वयं को देखने के लिए और जानने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए और दिव्य बुद्धि चाहिए। मैं दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूं ताकि तू स्वयं के स्वरूप को देख। तो हम जब दिव्य बुद्धि हमको मिलती है, समझ मिलती है, तो हमको आता है कि ये पांच तत्व ये कभी नाश नहीं होते, लेकिन कोई भी तत्वों से बनी चीज वो कभी अविनाशी नहीं होती, वो हमेशा नाश को प्राप्त करती। तो इस तत्वों के बने इस शरीर के अंदर हम चेतन अविनाशी शक्ति आत्मा है और वो परम पिता परम आत्मा है जो हमारे पिता है। वो पिता हमको कहते हैं, अगर तुझे मेरे से कनेक्शन जोड़ना है तो उस समय देह और देह के संबंध और देह की दुनिया इन सब से मन को हटा करके केवल मात्र अपने आप को देखना, मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। तो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जैसे कोई छोटी चीज होती है, फोटो उसकी इतनी बड़ी भी बन सकती है और इतनी छोटी भी बन सकती है। चाहे तू मुझे बड़े रूप में देख ले, चाहे तू मुझे छोटे रूप में देख ले, लेकिन मैं हूं एक दिव्य ज्योति स्वरूप और तू भी दिव्य ज्योति स्वरूप। और अगर तुझे मुझे याद करना है तो यहां याद करेगा तो यहां देह के जगत में नाना प्रकार के प्राणी, अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक दृश्य हैं, तेरे मन को एकाग्र नहीं होने देंगे। इसलिए मैं तुझे यही संदेश देता हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं और मैं जहां हूं, तू मुझे वहां अपना पिता जान, मुझको याद कर। ये परमात्मा का दिव्य संदेश, और इसके आधार से जो तुझे मेरी प्राप्तियों की आवश्यकता है, वो आत्मा को प्राप्तियां चाहिए, शरीर को तो कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन तुझे चाहिए शांति, वो किसी मार्केट या किसी प्राणी के पास नहीं है। तुझे चाहिए सुख, वो पदार्थों में नहीं है जो इंद्रियों से परे की सुख है। तुझे चाहिए आनंद, तुझे चाहिए संतुष्टि, जो तुझको चाहिए, तेरे लिए सारा खजाना मेरे पास। इसलिए मेरे बच्चों को एक संदेश दे दो कि अगर मुझ परमात्मा से सर्व प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए सारा दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने को आत्मा समझकर, ज्योति देश तेरा भी घर है मेरा भी घर है, वो पांच तत्वों से परे का लोक है, वहां सूर्य चांद और तारागण का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो लाइट ही लाइट का वतन है, उस सूक्ष्म वतन से भी परे उस मूल वतन में मन और बुद्धि से आ जाओ। जैसे आप शरीर यहां है, आत्मा सूक्ष्म जा रही है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, गोल्डन लाइट है, सुनहरी लाइट है, और उसी लाइट में वो ज्योति बिंदु परमात्मा के पास हम भी रहते थे। हम यहां रोल अदा करने आए हैं, ये हमारा घर नहीं। दाता कहते हैं चंद क्षण के लिए तो बीच बीच में अपने घर वापिस आ। एक छोटा बच्चा खेलने जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर कहता मम्मी मम्मी, बोलो क्या बात है, बात कुछ नहीं, ऐसे बीच में मम्मी मम्मी कहने चला आता है। दाता भी कहते हैं तू भी बीच में कभी कभी तो आता रहे, तू अपना घर भूल गया, अपने सच्चे पिता को भूल गया, जो तुझे चाहिए वो सब चीजों से वंचित होने पर भी तुझे ये ख्याल नहीं आता ये सब किससे मिलेगा। तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को ये संदेश दिया है, क्योंकि आज आप सभी आए हैं और मैं समझती हूँ इनके संबंधी भी आए हैं, कोई ज्ञान में है, कोई शायद ज्ञान ना भी सुना हो। मैंने अपना ये फर्ज समझा कि मुझे ये बता देना चाहिए कि ये बहनें अपना जीवन किसको अर्पित करने जा रही हैं। किसी मानव को नहीं, वो सर्वशक्तिवान को, जो दुखों को हर के सुखों को देने वाला है, जो हमारा अजर अमर विनाशी पिता है, ये उसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्ञान के नेत्र से और ज्ञान की बुद्धि से हम उसको देख और जान सकते हैं। तो अभी मैं वाणी को विराम देती हूँ। मैं समझती हूँ कुछ क्षणों के लिए हम सब तरफ से मन को हटा कर, हम आत्मा हैं, नाशवान देह नहीं है, ये हमारा चोला है, ये हमारा आसन है, सिंहासन है, रथ है। तभी तो जब कोई शीश छोड़ता तो क्या कहते हैं, अर्थी का उठानी है, क्योंकि रथी रहित जो गाड़ी हो गई उसे अर्थी कहते हैं। रथ है लेकिन रथी चलाने वाला नहीं तो अर्थी कहलाई। तो श्री रथ है, चलो इस देह रूपी रथ को यहां छोड़े, मन से छोड़ना है, मन को यहां से अपने को सुनाते जाइए मैं ये देह नहीं हूं, एक ही देह की दुनिया, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये संबंध, ये सब देह के संबंध हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा परमात्मा की संतान, तो कुछ क्षणों के लिए हम सब मन और बुद्धि से देहों के लोक से ऊपर, चांद सूर्य से भी पार, जहां सुनहरी सुनहरी लाइट ही लाइट है, ऐसे वतन में दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा के सन्मुख मैं आत्मा विराजमान हूं, और परमात्मा अपनी शांति शक्ति प्रेम आनंद की किरणों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। ऐसी अपनी मनोस्थिति में स्थित हो हम कुछ क्षणों के लिए अपने घर में चलते हैं। चलो सब चलो। छोड़ो इस देह का किनारा, देखो कैसे जा रही है चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने ज्योति बिंदु पिता से मिलन मनाने के लिए, जिनका हमारा अविनाशी नाता है और अविनाशी प्राप्तियों का वो दाता है। चल सब चल। ओम शांति, ओम शांति।